جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامۃ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کی کالز، آپ کے سوالات، ان کو شامل کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ایک ٹاپک جس کے ابتدائی ہم دو تین سوالات لیتے ہیں، بہت اہم ہے، نظر لگنے کے حوالے سے، اور یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا ایک کانسیپٹ اور عقیدہ ہونا چاہیے، پھر نظر اتارنے کے جو مختلف طریقے ہیں، آپ کے ہاں کیا رائج ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے، آپ اپنا تجربہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کے ہاں بڑے بوڑھے اس حوالے سے کیا علاج تجویز کرتے ہیں، تو اس کی رہنمائی لینے کے لیے کہ کیا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو اس میں رہنمائی ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ شرعی طور پر اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، نظر اتارنے کے کیا ہو سکتے ہیں، نظر واقعی حق ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے دین نے وہ کیا فرمایا ہے، آج یہ بہت سے سوالات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ کا کرم۔
نظر لگنے کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ایک ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ فرمائیے کہ نظر لگنے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ واقعی نظر لگتی ہے، اور اس کے پھر میں آپ سے اس کے علاج بھی کچھ پوچھوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جن چیزوں کا وجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کو تسلیم کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
اور جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی تو اس چیز کو آدمی انکار کرے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چیز دیں وہ امت کو لینی ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں امت کو وہ چیزیں چھوڑ دینی ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نظر لگنے کے حوالے سے واضح فرمان عالی شان موجود ہے۔ بخاری شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یعنی نظر کا لگ جانا یہ درست ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت فرمایا ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ وہ فرمایا کہ جب تم سے آزاد ہونے کا کہا جائے تو دھو لو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی نظر کے लगने के नजर का लग जाना दुरुस्त है और नजर की जो शिद्दत है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको भी बयान फरमाया है। चुनाचे मुसनद शिहाब में एक रिवायत है, हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक नजर का असर यहाँ तक हो जाता है कि वो आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हंडिया में डाल देती है। अच्छा शफीक साहब, ये जो हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, अगर इनको हम मजीद देखें तो कुरान पाक से भी नजर का लगना साबित है। सूरह कलम की आयत नंबर 51 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइन यकादुल लदीना कफरु लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा वयकूलूना इन्नहू लमजनून। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का हर तरह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाने के हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं कि किसी तरह अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रास्ते से हटा दें, जो आप राह हक पर लोगों को ला रहे थे, दावत दे रहे थे। तो उन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में से एक साजिश कुफारे मक्का ने यह भी की कि कबीला बनी असद ये नजर लगाने में बड़ा यानी पुर तासीर था।
अल्लाह
और इनके
सवाल मशहूर और वैसे भी कईयों के आजकल भी होते हैं ना मशहूर के ये फुलां की नजर बहुत
तेज है। तो अहले अरब के अंदर जो कबाइल थे उन कबाइल के अंदर जो बनी असद जो कबीला था ये नजर लगाने में बहुत ज्यादा यानी मशहूर था और इनमें जो नजर लगाने के माहिर लोग होते थे वो दावे के साथ नजर लगाया करते थे।
अल्लाहू
अब उनका तरीका कार क्या होता था नजर लगाने वालों का कि 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे।
अच्छा
कुछ भी नहीं पीते थे यानी अपने आप को भूखा प्यासा रखा। अब भूखा प्यासा रखने के बाद जिस चीज को उन्होंने नजर लगानी होती थी ना कि अब अगर कोई उन्होंने यानी फरबा ताजा ऊंट देखा तो अब 3 दिन तक अपने आप को भूखा प्यासा रखेंगे, उसके बाद फिर उस ऊंट को देखेंगे और ये जुमला कहेंगे ऐसा ऊंट तो हमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है, आज तक ऐसा ताकतवर ऊंट ऐसा फरबा ऊंट तो हमारी नजरों में नहीं आया। बस उनका ये जुमला कहना होता था और साथ ही फिर वो अपनी कनीजों से कहते हैं कि ये पैसे पकड़ो, अब फला का ऊंट ज़बह होने वाला है
अल्लाह
और जाके उसका गोश्त खरीद लेना।
और बकायदा रिवायत में वो भी कहा गया ना कि ये नजर ऊंट को भी जो हंडिया तक पहुंचा दे।
बिल्कुल, तो ये रिवायत में हदीस में ये फरमाया गया कि ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है। तो ये उसकी बकायदा तजर्बे होते थे उन लोगों के और वो दावे से कहते थे और ऐसा हो जाता था। तो अब जो कुफारे मक्का थे उन्होंने कबीला असद के ऐसे नजरबाजों को उजरत पे लिया कि तुम इस राह से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तबलीग कर रहे हैं लोगों को हमारे दीन से मजहब से हटा के एक अल्लाह की तरफ लेकर आ रहे हैं तो इनको रस्ते से हटाना है, नजर लगानी है। तो जो कबीले बनी असद के जो लोग नजर लबास थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों के जरिए नजर बद लगाना चाहते थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उनका किसी भी तरीके से नजर बद का असर ना हुआ
ना हुआ।
तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ही उसी वाक्य की तरफ इशारा फरमाता है, वइन यकादुल लदीना कफरु लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, और यूं मालूम होता है कि कुफार फिसला देंगे आपको अपनी नजर बद से जब लम्मा समिउ ज़िक्रा वयकूलूना इन्नहू लमजनून, जब वो कुरान सुनते हैं और फिर वो साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे इल्जाम भी लगाते थे कि ये तो मजनून है। हालांकि कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रहा है, इसका एक एक लफ्ज बिल्कुल रोशन है और ये कुफार का बेजा एतराज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब हुजूर कुरान पढ़ते तो हुजूर का कुरान पढ़ने के वक्त वो नजर लगाते कि ऐसा कलाम तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो वो इस तरह देखकर हुजूर को नजर लगाना चाहते थे लेकिन अल्लाह तबारक व ताला اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یوں نظر کا لگنا قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ کفار نظریں بد لگایا کرتے تھے اور حضور کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو محفوظ رکھا۔ اور حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کی جیسے کہ العین حق، ان کے نظر کا لگنا حق ہے، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظر کے حوالے سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو خود حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کو نظر لگ جایا کرتی تھی، تو جو صحابیات ہوتی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ دعائیں پڑھتی کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح سے کیا ان بچوں کی نظر اتار دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نظر کے اتارنے کے حوالے سے رخصت ارشاد فرمائی، اور حکم بھی بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر اتروانے کا حکم بھی فرماتے تھے۔
ٹھیک ہے، یعنی نظر لگنا تو برحق ہے، اور اس کو اتارنے کے طریقے بھی خود حدیث طیبہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ روایت میں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ آزاد دھو لو تو اسے دھو لیا کریں، یہ وہ، تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے، اور اس کے اور کیا انداز ہو سکتے ہیں؟
شارین حدیث نے اس کا ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو نظر لگی ہو اور اس کو کسی شخص کے بارے میں گمان ہو رہا ہے کہ مجھے اس نے نظر لگائی تھی کیونکہ میں پہلے صحیح تھا، لیکن اس آدمی نے جب سے دیکھا ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اب اس کا گمان آ رہا ہے کسی پر، تو اب جس شخص کی طرف گمان ہوا تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنے اعضا دھو لو، یعنی مراد اس کا یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو پانی گر رہا ہوتا ہے، جمع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی کچھ چھینٹیں جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر کچھ چھینٹیں اس کی مار دی جائیں، تو اس طرح اگر اس کی نظر لگی تھی تو اس کے اعضاء وضو سے جو پانی جمع ہوا، اس جمع شدہ پانی کی کچھ چھینٹیں جس کو نظر لگی ہے اس پہ ڈال دی جائیں، تو اس سے اگر اس کی نظر لگی ہوگی تو وہ نظر اتر جائے گی۔
ٹھیک ہے،
تو یہ حدیث مبارکہ کا ایک مضمون شارحین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے اثر سے بچانے کے لیے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، اور ایک دعا بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کم سن جب تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھ کے ان پہ دم کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اباکما کانا یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے جو باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اولاد سے حضور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین سے فرماتے تھے کہ تمہارے باپ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس دعا کے ذریعے اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو تعویذ کیا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی پناہ میں لایا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں اگر یاد کر سکتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس دعا کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے، اسی طریقے سے جو حشرات الارض زہریلے جانور ہوتے ہیں ان کے اثر سے بچانے کے لیے، اسی طرح جو نظریں لگ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، تو نظر بد سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔
کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔
تو اس طرح کی اور بھی دعائیں مدنی پنصورہ میں دیکھی جا سکتی ہیں، بالخصوص یہ جو آیت کریمہ ہے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ سورہ قلم کی آخری آیات میں سے ہے، 51 نمبر آیت ہے۔ तो इसको भी अगर पढ़ के अगर जिसको नजर लगी है उस पर दम कर देंगे तो इंशाल्लाह उसका असर दूर,
खुद भी पढ़ सकते हैं,
खुद भी पढ़ सकते हैं,
खुद भी पढ़ने, आपने भी पढ़ी, अपने पे दम कर ले माशाल्लाह,
अपने ऊपर भी दम कर
सकते। तो अच्छा, ये नजर की आपने जो बीच में गुफ्तगू की है कि उसके आजा से या जिसके बारे में गुमान लगा के फुला की नजर लग गई मुझे, तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक नजर लगने वाले की नजरें बद ही हो? और क्या ये भी है कि जैसे घर में है, बच्चों को भी अब वालिद देख रहे हैं, वालदा देख रही हैं, बहनें, भाई, इस तरह मुख्तलिफ अपनी घर की फैमिली को, उनको आपस में कोई वो नहीं है, उससे बच्चे से कोई हसद का उनसर नहीं है, कोई दीगर ऐसा नहीं है, तो इनकी भी नजरें लग जाती हैं?
देखिए, किसी को हसद हो जरूरी नहीं है कि नजरें बद के पीछे जो
वो चीज
अमल हो वो हसद होता है या नफरत होती है। किसी चीज को देखकर मतलब ऐसा कि जैसे पहले कभी नहीं देखा हो,
अब बिल्कुल वो एक यूनिक नजर आ रही है, और एक
आम तौर पे कभी कभी किसी शख्स की नजर इस तरह लग जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से तालीम फरमाई है उम्मतियों को कि जब तुम्हें किसी की कोई चीज पसंद आए, ठीक, बिल जैसे मिसाल के किसी का बेटा पसंद आ रहा है, किसी की बच्ची है छोटी सी है और प्यारी सी है, और उसका मुस्कुराना, हंसना, बाजों का बच्चों का भागना, उनकी बातें करना, ये तो जब किसी की कोई चीज तुम्हें पसंद आए तो फरमाए कि तुम्हें क्या है कि तुम माशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्ला नहीं कहते?
क्या बात, कहना चाहिए नहीं
तो ये? कहना चाहिए। इसका असर क्या होगा कि जब किसी की कोई चीज हमें पसंद आती है, और आमतौर पर जब हम अपने घर में देखते हैं अपने ही बच्चे छोटे बड़े अच्छे प्यारे से लगते हैं, तो ऐसे में माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला ये कहा जा सकता है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फीही, ये दुआ दी जा सकती है। तो इसका फायदा ये होता है कि इस दुआ के पढ़ने से जिस बच्चे को, जिस बच्ची को, कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे होते हैं तो कभी बच्चे भी अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं कि आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आम रूटीन से हटकर, तो कभी इस तरह भी नजर लग जाती है। तो अपने माँ बाप
लग जाते
हैं, अपने बच्चों को देखें, अपने भाई बहनों को देखें, अपने भतीजे भांजों को जब देखें, और आमतौर पे कभी ना कभी उनका वो घर में आने का लम्हा ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं, तो ऐसे में लाजमी तौर पे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला या तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फीही इस तरह दुआ दे दें। अगर ये याद ना हो माशा अल्लाह तो आसानी से आप कह सकते हैं, यूं कहते हैं अल्लाह ताला बरकत दे, यूं कहते हैं अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए,
माशा,
तो इस तरह
ये कलिमात उर्दू में भी कह
उर्दू में भी कह सकते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह नजरे बद के असर से हमारे घर के अफराद भी महफूज रहे।
माशाल्लाह, मदनी चैनल पर भी सुनते हैं तो किबला अमीरे अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मिनालिया को देखा जाता है कि आप भी मदनी मुजाकरे के दरमियान कोई बच्चों के ऐसे क्लिप्स चलते हैं, कुछ नजर आती है, तो आप माशाल्लाह और इस तरह के कलिमात और दुआएं भी देते हैं, बरकत की दुआएं भी देते हैं, तो ये हमें भी ये अंदाज इख्तियार करना चाहिए अपने घर में भी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के बच्चों को, दीगर किसी और के बच्चों को भी, जब हम इस हालत में देखें और किसी को भी देखें तो बरकत की दुआ दे दें, माशाल्लाह कह दें, और ताकि जरूरी नहीं कि किसी के अंदर दुश्मनी हो या हसद हो, जब भी उसकी नजर लगेगी, ऐसे भी लग सकती है किसी को, बिल्कुल घर वाले तो नहीं चाहते कि कोई बीमार हो जाए, लेकिन बाजुकात किसी ने ऐसा बोला। अब यहाँ दूसरा एक मामला है, नाज़रीन आपके कॉल भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी मिर्चों वाला टॉपिक भी हमें कुछ लेना है, क्योंकि नजर उतारने में अपने अपने कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, और अब किसी ने कह दिया, तारीफ कर दी कि माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप भी चैनल पे तशरीफ फरमाते हैं, आपके किसी शागिर्द ने कह दिया, घर से मैसेज आ गया, कहीं से भी दोस्त ने कह दिया कि आज आपने कमाल कर दिया है भाई, आज तो बयान ऐसा किया है, आज तो ये इस तरह का जुम्मे में बयान किया, उसके बाद किसी ने कर दिया, अब तबीयत भी डाउन हो गई, खराब हो गई तबीयत, तो अब ये सारा कुछ उसी पे डाल दिया जाएगा या क्या करेंगे इस हवाले से?
ये भी जरूरी नहीं है कि
पास तो इतने एहतमाम के साथ उसके पास पैगाम भेजते हैं कि आपने कहा था और उसके बाद ये हो गया।
नहीं, देखिए, ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि इतने सारे लोगों ने जो हौसला अफजाई की और माशाल्लाह भी कहना भूल गए तो उन्हीं की नजर लगी है। हो सकता है कि आप जब वहां तकरीब में हैं, वहां आपने खाया ही ऐसा जो आपकी सेहत के लिए मुजिर था, इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई और सारा आपने उन लोगों पे डाल दिया कि आप लोगों ने इतनी तारीफ की है, नजर लग गई। तो ऐसे में देखें, बदगुमानी भी ना करें
जी,
लेकिन
کسی کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یار فلاں ہے تو بس جیسے آپ نے ان کے بارے میں کہا وہ تو خاص قرآن نے بیان فرما دیا ان کو، اب کسی شخص کے بارے میں ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں کہ وہ باقی تجربہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مشاہدہ یہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد کچھ معاملہ ایسا ہو گیا۔
ہاں تو اب اس میں یہ ہے کہ بدگمانی نہ پالیں، نظر حق ہے اپنی جگہ اس، لیکن خاص کسی شخص کی نظر ہی لگی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کنفرم یقینی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ اس کا وجود ہے، یہ حق ہے، درست ہے، لگ جاتی ہے۔ اب اس میں شفیق صاحب نظر لگنے کے حوالے سے بعض اوقات ہم خود بھی اپنے بچوں کو نظر لگواتے ہیں،
اور صرف آج بچوں کا ہی نہیں بلکہ کئی چیزیں ہم ایسی واضح کرتے ہیں، اور کئی چیزیں جن میں چاہے وہ ہمارا کوئی فنکشن ہو، کوئی دعوت ہو یا کچھ ایسے معاملات ہو کہ وہاں کئی چیزیں ایسی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ لگے نظر، آپ نظر لگانے کی گویا کہ دعوت دے رہے ہیں۔
اب بچے پیارے لگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اب آپ نے کلپ بنائے اور ان کا ہنسنا یہ وہ، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ اب اس طرح جو دیکھنے جن کے بچے نہیں ہیں وہ جب اس طرح دیکھتے ہیں تو ایک حسرت جہاں ہوتی ہے تو عام طور پہ اس طرح بھی نظر لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کو کئی دنوں سے اچھے کھانے میسر نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ خوب اچھے اچھے گھر میں کھانے لا رہے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں لا رہے ہیں اور آس پڑوس والے انہیں دیکھ رہے ہیں، تو ایک بے روزگار آدمی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی فراوانی ہے تو اگر اس نے ماشاء اللہ نہ کہا تو ممکن ہے اس کی کوئی حسرت بھری نگاہوں سے ہی نظر لگ جائے۔ تو اس بنا پر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں نا، وہ کچھ نعمتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں اور آپ دوسروں کو نہیں دے پا رہے، طاقت گنجائش نہ ہو، تو پھر ان نعمتوں کو چھپا کر اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ اس سے انشاءاللہ یہ کہ تو پڑوسیوں کا دل نہ دکھے گا اور دوسرے کے نظر لگنے کے چانس بھی انشاءاللہ اس سے کم ہو جاتا۔
ماشاءاللہ یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے اور اس طرف ہمیں رہنا چاہیے۔ بہرحال کچھ آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سوال ہمارا اہم رہتا ہے، مرچوں کے ذریعے یا دیگر ایسی چیزوں کے ذریعے نظر اگر اتاری جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی،
مدنی چینل کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، کیا بات ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پوچھنا یہ تھا کہ یہ بولا جاتا ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے، اس کی کیا اصل ہے، ارشاد فرما دیا۔
ٹھیک ہے جی، اس کا جواب تو ہو ہی چکا ہے ہماری اس گفتگو سے اور پھر مختصرا جواب لیں گے، مزید کال۔
جی، میرا سوال یہ ہے کہ جی میرے سمجھو ایگزامپل ہے والد صاحب ہیں، تو وہ ماشاء اللہ کافی ایکٹیو تھے وہ نا، تو اب جو ہے نا جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے ایکٹیو تھے ان کو آہستہ 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 نظر کھا گئی ہے، اثر وغیرہ نہیں ہے نظر کھا گئی ہے، تو اس میں کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اثر ہے کہ نظر ہے؟
جمیل صاحب، یہ تو آپ کو روحانی علاج کا بھی سلسلہ ایک وہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک پروگرام مدنی چینل کا باقاعدہ جس میں روحانی علاج اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تجاویز کی جاتی ہیں، اسی طرح استخارے کا جو نمبر ہے اس پر آپ کال کر کے استخارے کے حوالے سے بھی اپنی معلومات آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تعویذات اطاریہ اور آدھے وظائف وغیرہ جہاں سے آپ کے یہاں علاقے میں بھی جس قریبی مسجد میں میسر ہوتا ہے تو آپ وہاں جائیے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو وہاں سے وظائف بھی ملیں گے، تعویذات بھی ملیں گے اور اس کے اچھے فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ بہرحال جمیل صاحب، مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ پہلی بات تو وہ اونٹ کے ہنڈیا میں جانے والی اور قبر تک پہنچنے والی،
تفسیر صراط الجنان میں خاص اسی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کے تحت مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ استاذ محترم نے یہ احادیث نقل کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ذکر کیے مسند شہاب کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے، یعنی یہ کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ نظر کے برے اثر کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی جانور ہے جیسے اونٹ ہے، تو اس کو اگر نظر لگائی، اس کے نظر لگنے کے بعد یہ بیمار ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اب یہ مرنے سے پہلے پہلے پھر یہ ہوگا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ مردار نہیں کھایا جاتا، تو اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کرے گا اس کا مالک تاکہ اس کا گوشت ضائع نہ ہو، اور پھر وہ یا تو بانٹے گا یا بیچے گا۔
बात,
तो इस तरह वो लोगों तक पहुंच जाता है, हंडिया तक।
ठीक है,
तो अब इस वजह से नजर लगाने वाले अगर कोई यूं है कि भाई मैं नजर लगाने बहुत माहिर हूं और मैं नजर लगाता हूं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। नजर लगाना ये वो काम है कि जिस काम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को इस नजर लगने के असर से महफूज कर रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह में दे रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने आप को समझता है कि मैं नजर लगाने में बहुत माहिर हूँ, तो ये कोई खूबी नहीं है। और इस अगर ये किसी को वस्फ है तो उसको चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ करके इसको अपने से दूर करने की कोशिश करें कि ये कैसे चीज है कि जिसके जरिए इसका तो कुछ नहीं जा रहा,
दूसरों का नुकसान,
दूसरे का नुकसान पहुंच
फिर ये दुआएं याद कर लें जो आपने बताई हैं कि अगर ऐसा ही है उसके साथ तो वो ये चीजें साथ साथ दुआ मांगा करें, साथ ये दुआ पढ़ लिया करें, या माशाल्लाह तो कम अज कम कह लिया करें जब भी।
हदीस मुबारक में तो यानी तंबीह की जा रही, तुम्हें क्या है कि जब तुम्हें किसी की कोई चीज अच्छी नजर लगती है तो तुम माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं कहते। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी तरगीब है कि किसी की कोई चीज अच्छी लगे मुसलमान भाई की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इसकी निस्बत करें कि अल्लाह ताला ने इसको जो कुछ अता फरमाना था अपनी मशीयत से वो अता फरमाया है। तो इस तरह दुआ देने से भी इंशाल्लाह मुसलमान का नफा होगा। और एक तरीका कार ये भी है कि मुसलमान बेहतरीन मुसलमान की अलामत यह है खैरुन नास मन यनफाउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफा बख्शो। तो हम अगर ये दुआ देंगे तो हमारी दुआ देने से मुसलमान की अशिया का तहफ्फुज़ होगा
माशाल्लाह। दूसरे ये जो कह रहे हैं कि वालिद साहब एक्टिव थे अब एक्टिव नहीं है और यही कहा जाता है बार बार, ये तो मैं चाहूंगा एक तो अपनी जगह मसला है, अब एक कोई आदमी अपने ऊपर दीगर आवारिस भी होते हैं बाद चले, इन्होंने बतौर खास हम इनका टॉपिक नहीं लेते, किसी की भी बात करें, अपनी सेहत या उम्र या वक्त, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिसकी वजह से कुछ कारोबारी डाउन मामला हो जाते हैं। हम पिछले कई महीनों से या एक साल के पीछे की रिपोर्ट जो हो तो कई ऐसे कि जिनके कारोबार बहुत ऊपर हुए और कई ऐसे कि जो बहुत ही नीचे आ गए, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रोड पे आ जाना। तो अब ऐसी चीजों में क्या यही कहते रहे हर वक्त नजर खा गई नजर खा गई नजर खा गई, नजर की वजह से ये हमारे साथ ऐसे, इस ये यकीनी और कती कैसे कह सकते हैं ये?
इस चीज को तो वाजे तौर पे हम यकीनी यकीनन वाजे नहीं कर पाएंगे कि ये इस वक्त आपको नजर थी तो नजर खा गई या कुछ और चीज है या असर है। तो अब इसमें यह है कि अल्लाह तबारक व ताला पे बंदा भरोसा रखे और जो नजर या बुरे असर से तहफ्फुज की दुआएं हैं उनको बंदा पढ़े, बिलखसूस दो सूरह फलक और सूरह नास है, ये तो है ही अल्लाह तबारक व ताला की पनाह तलब करने वाली, इनको सूरह मुअव्वज़ातैन कहा जाता है, यानी वो सूरतें जिनके जरिए अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाती है। तो इसमें तकरीबन वो सारी चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दी जिन चीजों से किसी भी शख्स को जरर लाहिक हो सकता है।
ठीक है,
तो अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों में उन सारी चीजों को जमा कर दिया है। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, इसमें ये सब कुछ आ गई। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक, अब जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं उनमें जो बुरी चीजें हैं उनके शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब की जा रही। तो इस तरह इस सूरह फलक सूरह नास को पढ़ने का मामूल बनाए और साथ ही साथ अल्लाह ताला पे भरोसा रखे।
ठीक,
सिर्फ ये सोच के नजर खा गई और करना भी नहीं कर दिया, करना कुछ नहीं है, तो इससे आदमी खुद ही जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होते होते और डाउन पोजिशन में चले जाता है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।
ठीक है, अच्छा एक ये आम तौर पे बच्चों को एक छोटा सा टीका लगा दिया जाता है, कोई एक नुक्ता लगा दिया, डॉट बना दिया ब्लैक कलर का, तो ये क्या इससे फिर काफी आदमी ये समझ आए कि बस ये मैंने कर दिया अब ये बच्चा ठीक है अब इसको? और होता ये उस वक्त है जब बच्चे को पूरा सजा लिया जाता है, यानी उसको पूरा तैयार किया जाता है और साथ एक उसको एक वहां डॉट लगा दिया जाता है, एक तरीका इसे बचने के लिए ये जो हमारे आवाम में रायज है, फिर अगर लग जाती है नजर तो फिर मिर्चों का काफी वो इस्तेमाल होता है इसमें, क्या कहेंगे आप?
छोटे बच्चों में बिलखसूस जब इनको सजाया तैयार किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, बिलखसूस ये दो तीन साल के अंदर अंदर के जो बच्चे, तो इसमें ज्यादा एहतमाम होता है। कि इनके कहीं पेशानी पे कोई लगा देता है, कोई थोड़ी के नीचे लगा देता है, कोई कान के पीछे लगा देता है, तो इस तरह कोई तलवों के नीचे भी कुछ लगा देता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा हमें बहुत प्यारा लग रहा है, अब उसके यहाँ एक काला नुक्ता लगा हुआ है, तो अब ये होता है देखने वाले को उसकी सजावट के साथ साथ ये क्या कर दिया, तो इससे क्या हुआ उसकी जो नजर थी वो अब इस तरफ आई और बच्चे की खूबसूरती को जो वो देख रहा था उसके देखने के साथ साथ वो एक ऐप पे नजर पड़ गई। तो इस ऐप पर नजर पड़ने की वजह से अब वो नजर का जो बुरा असर था ना वो खत्म हो गया,
खत्म हो गया,
यानी वो टोटली तौर पे उसको वो बच्चा अच्छा नहीं लग रहा। तो किसी जाविये से थोड़ा सा एक नक्स उसमें डाल दिया जाता है ताकि नजरे बद से बचाव हो। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी आता है कि आप जब किसी खूबसूरत बच्चे को देखते तो तरगीब दिलाते कि इस बच्चे को भी कुछ काला टीका लगा दिया जाए। अब वो आमतौर पे जहाँ जिस कौम में जिस तरह रवाज है, कोई कान पे लगाता है, कोई गाल पे लगाता है, कोई पेशानी पे, कोई थोड़ी पे, कोई तलवों के नीचे, तो इस तरह करने से इंशाल्लाह बच्चों के नजरे बद से असर के असर से बचने की एक सूरत बनेगी। इसी तरह जो आपने मिर्चों वाला जिक्र
फरमाया, बाद का ऐसा होता है वो टीका लगाने से और खूबसूरत हो जाते हैं, बाद बच्चे ही इस कैफियत के बजाय कि वो सामने वाले को पता कि ये इस वजह से लगाया हुआ
है। एक तो है कि जैसे काजल जिस स्टिक से लगाया जाता है उसके जरिए बारीक सा लगाएंगे वो तो होगा खूबसूरत बनाने, लेकिन यहाँ ये मकसूद नहीं है। यहाँ उस
मसला यही है कि जो करने वाले हैं वो उसको ऐसा या तो लगाएंगे ऐसा खुद बिल्कुल गोल मटोल सफेद बिल्कुल बच्चा है उसकी गाल पर एक काला वो लगाएंगे तो वो और नुमाया हो रहा है, वो और वाजे जो है वो।
तब ये असल है मकसूद बच्चे को नजरे बद से बचाना,
ठीक है,
ना के नजरे बद लगवाना। तो इसको भी मद्देनजर हमारी अवाम को बिलखसूस जो जिनके नए नवेले इब्तदाई पहले दूसरे बच्चे होते हैं वो ज्यादा एहतमाम कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला इन सब के गोदों को हरा भरा रखे और बच्चों को सलामती नसीब फरमाए। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था मिर्चों के हवाले से, तो आम तौर पे मिर्चें जिसको नजर लगी होती है घर में महसूस हो जाता है कि अभी तक सही था फिर ये क्या हो गया, तो अब ये कुछ मखसूस तादाद में मिर्चें ली जाती है, शायद 7 अदद मिर्चों का लिया जाता है और उसको उसके जिसको नजर लगी है उसके जिस्म पर उसको फिराया जाता है। फिराने के बाद फिर उसको ये जलाते हैं, जलाने में अगर नजर लगी होगी तो मिर्चों की जो स्मेल है वो नहीं आती।
सही।
हालांकि मिर्चें जब जलती हैं तो इसकी धांस जो उठती है पूरे घर में फैल जाती है और अच्छे खासे लोगों को खांसी होने लगती है अगर ये मिर्चें जलती हैं तो घर में, लेकिन जिसको नजर लगी होगी और ये मिर्चें जब इसको जलाई जाती हैं तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अब ये अमल कुछ मर्तबा जब किया जाता है तो इसके जरिए से जब स्मेल आने लग जाए यानी धांस उठने लग जाए तो फिर वो नजर का असर खत्म हो जाता है। तो ये भी एक टोटका है और अल्लाह ताला ने जो अशिया पैदा की हैं वो हमारे फायदे के लिए पैदा की हैं और मिर्चों के जरिए से भी इस तरह नजर का उतरना ये अवामी टोटकों में से है और ये टोटका भी शरी एतबार से कोई नाजायज नहीं है। इसके जरिए भी नजर का उतारने का अमल हो सकता है, लेकिन अफजल तरीका कार वही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजरे बद के असर से बचने का तालीम फरमाया यानी दुआओं के जरिए, उस तरीके कार को भी अपनाएं। और जो टोटके इस तरह के नजरे बद से बचने बचाने के अवाम में राइज हैं और इसमें कोई शरी एतबार से कोई इसराफ भी नहीं पाया जाता और इसका बाकायदा फर्क भी लोगों को महसूस होता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है।
ये मिर्चों वाले को बहरहाल ज़िया या इसराफ नहीं कहेंगे,
इसको इसराफ नहीं कहेंगे, ये जिस तरह एक इलाज होता है तो इलाज के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये तरीका इलाज है नजरे बद को दूर करने का, तो ये इसराफ नहीं है। हाँ, अगर कोई वैसे ही मिर्चें जला रहा है वैसे ही फेंक रहा है
बगैर किसी तरीके
बगैर किसी मकसद के तो फिर वो इसराफ के जुमले में आएगा, लेकिन यहाँ एक मकसद है और उस मकसद को पूरा होता हुआ भी लोग देखते हैं,
ठीक है,
तो ये इसराफ नहीं होगा।
बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं यानी कोई सदके में ज्यादा होता है कि अब अंडों का सदका है तो गोश्त का सदका है तो वो उठाकर उसको बकायदा डाल देते हैं कहीं फेंक देते हैं, यानी ये अंडे फेंक दें कहीं, तो उसमें कोई आगे खास वो मसरफ नहीं है उसका कि कहीं किसको खिलाना है या कहाँ डालना है, तो इसमें क्या कहेंगे?
इस तरीके कार से बचना चाहिए कि इसमें आमतौर पर लोग फेंक देंगे, चौराहे पे रख देते हैं और इस तरह की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि उस पर अगर किसी का पांव पड़ गया तो उसको नुकसान भी पहुंच जाता है। इस तरह ये कब्रों में मुर्गी को दबा देते हैं उसका गोश्त, और उसके अंदर कुछ ना कुछ अमलियात होते हैं, और अगर उसको किसी ने हाथ लगाया या कुछ भी हुआ तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो इन तरीक़ाकार से हमें बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत आमद बरकातुम लालिया ने उम्मत की इस हवाले से भी खैरख्वाही के लिए तावीज़ात अत्तारिया का एक सिलसिला हमें अता फरमाया है। तो इंशाल्लाह तावीज़ात अत्तारिया के जरिए भी रूहानी इलाज किए जाते हैं और कईयों को फ़ायदा हो रहा है। तो मुमकिन है आप जो मुझे सुन रहे हैं आपको भी तावीज़ात अत्तारिया के जरिए फ़वाइद हासिल हुए हों। तो नजर बद हो या इस तरह का कोई भी मामला हो तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम लालिया के जो तावीज़ात हैं इनको आप इस्तेमाल करें, और ये तकरीबन आपके इलाकों में भी दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मौजूद होते हैं, वहाँ पे आप रुजू करें।
माशाल्लाह दारुल ताले सुन्नत से भी आप इस हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। दारुल ताले सुन्नत की सर्विस फोन सर्विस जो है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये तकरीबन 5 घंटे दौरानिया बनता है। दोपहर 1 से 2 बजे वक्फा है। इतवार को ये दारुल इफ्ता सुन्नत की हफ्तावार तातील है, छुट्टी है, अब इतवार को होती है। तो बकिया आप अयाम में इन नंबर्स पर कॉल करके आप जरूर इस तरह की चीजें पूछ लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाज़ औक़ात अच्छाई के तौर पर ही कुछ अमल कर रहे होते हैं या नेकी समझ के ही कुछ कर रहे होते हैं, जैसे सदका है कुछ और इस तरह की चीजें, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी कुछ गैर शरी चीजें दाखिल कर लेते हैं कि जिनकी वजह से हम गुनाहगार हो रहे होते हैं। तो इस तरह के मामलात में चाहे वो नजर उतारने का कोई ऐसा तरीका, बिल्कुल एक अलग थलग कोई सामने आपके आ जाता है कि यूं करना है, इसी तरह तावीज़ात या दीगर कोई चीजें, तो उसके लिए आप जरूर उलमाए किराम से दारुल ताले सुन्नत से आप रहनुमाई हासिल क्या करें। कुछ मैसेजेस भी हैं जमील साहब, आज आपका टॉपिक ऐसा था तो ये काफी चीजें, मैं चाह रहा था कि ये टॉपिक ही कमा हकू इसमें काफी जो सवाल बनते हैं वो पूरे हो जाए। एक दो सवाल लेते हैं कि लाहौर से हैं, कहते हैं कि नमाज जो जाए नमाज है उसके ऊपर खाने काबा या गुंबद शरीफ की तस्वीर हो तो नमाज तो हो जाएगी।
इस तरह के जो गुंबद वाले इस तरह की जाए नमाजें होती हैं इस पर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद इनका अदब एहतराम आम तौर पे लोग कर नहीं पाते, बच्चे चढ़ते दौड़ते निकल जाते हैं। तो इस तरह की जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, लेकिन इसका फिर अदब और एहतराम को भी मद्देनजर रखा जाए कि इस पे पाँव ना पड़े, बच्चे इसके ऊपर से चलते हुए ना जाएं। नमाज पढ़ने के बाद फिर इसको अदब और एहतराम के साथ समेट लें लपेट।
ठीक है, अली हसन अली हुसैन की तरफ से ये एक सवाल है, ये कहते हैं 11वीं शरीफ का वक्त गुजर गया तो कोई चीज बांटनी थी, अब टाइम गुजर गया है तो बाद में कर सकते हैं।
11वीं शरीफ इसाले सवाब है, और इसाले सवाब का वक्त आप यूं समझे कि कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें इसाले सवाब कर सकते हैं। 11वीं शरीफ का वो महीना वो दिन वो तारीख अगर से गुजर गई, लेकिन आप जब भी इसाले सवाब करेंगे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंशाल्लाह पहुंचेगा।
माशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल का साथ भी देते रहे।
रब से मिला है चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रजा है।